अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
पूर्वोत्तर डायरी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई नई जानकारी। तो आधे घंटे के लिए इस सफर में हम देश के पूर्वोत्तर राज्यों के सैर पर आपको लिए चलते हैं। आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को महसूस करेंगे। तो आइए चलें पूर्वोत्तर।
पूर्वोत्तर डायरी।
आज सबसे पहले बात नागालैंड की। नागालैंड ने 18 से 23 मार्च तक नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण की मेजबानी की। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने क्षेत्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र सोबीवा में आधिकारिक तौर पर खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 6 दिन तक चले इन रोमांचक खेलों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 जगहों से लगभग 3,000 प्रतिभागियों ने 15 विषयों में प्रतिस्पर्धा की। कार्यक्रम 3 जिलों चुमो के दीमा, दीमापुर और कोहिमा में 12 जगहों पर आयोजित किए गए। खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस, ताइक्वांडो तथा वुशु और कुश्ती भी शामिल थे। हमारे कोहिमा संवाददाता ने बताया,
मणिपुर कंटिजेंट टू होम द कवेटेड ट्रॉफी आफ्टर इमर्जिंग एज द ओवरऑल चैंपियन ऑफ द 3rd नॉर्थ ईस्ट गेम 2024, सीमेंटिंग देयर लेगेसी एज अ चैंपियन ऑफ द फर्स्ट 2 एडिशंस। Manipur won a remarkable total of 130 medals, including 52 gold, 38 silver and 40 bronze. Host state Nagaland with an impressive performance throughout the event fought heroically to claim the second position in the medal tally.
तीसरे पूर्वोत्तर खेल के समय चैंपियन के रूप में उभरने के बाद मणिपुर के दल ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी वापस अपने घर के लिए ले ली। पहले 2 संस्करणों के चैंपियन के रूप में अपनी विरासत को मजबूत करते हुए मणिपुर ने 52 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 130 पदक जीते। मेजबान राज्य नागालैंड ने पूरे आयोजन में शानदार प्रदर्शन और रोमांचक मुकाबला करते हुए कुल 134 पदक हासिल किए और पदक तालिका में 2रा स्थान प्राप्त किया। 48 स्वर्ण, 42 रजत और 44 कांस्य पदकों के साथ नागालैंड का पिछले खेलों में शीर्ष 5 से तीसरे उत्तर पूर्वी खेलों में शीर्ष 2 पर पहुंचना राज्य में उल्लेखनीय खेल कौशल और खेलों के विकास को भी दर्शाता है। इस बीच असम ने सराहनीय कौशल का प्रदर्शन किया और 3रा स्थान हासिल किया। 43 स्वर्ण, 44 रजत और 52 कांस्य पदक मिले असम को और इसके साथ ही उसने एथलीटों में प्रतिस्पर्धी भावना और समर्पण की एक अद्भुत मिसाल सामने रखी। पूरे खेल में अनुकरणीय खेल कौशल और आचरण प्रदर्शित करने के लिए सिक्किम को फेयर प्ले ट्रॉफी प्रदान की गई। खेल भावना, एकता और उत्कृष्टता के मूल्यों को मूर्त रूप देने के लिए त्रिपुरा ने स्पिरिट ऑफ ओलंपिक ट्रॉफी हासिल की। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की भागीदारी और विभिन्न विषयों में प्रतिस्पर्धा के साथ न केवल खेलों को बढ़ावा दिया गया बल्कि एकता और सौहार्द की अनूठी भावना भी देखने को मिली।
द फेयर प्ले ट्रॉफी वॉज अवार्डेड टू सिक्किम फॉर डिस्प्लेइंग एग्जेम्पलरी स्पोर्ट्समैनशिप एंड कंडक्ट थ्रू आउट द गेम। त्रिपुरा बैक द स्पिरिट ऑफ ओलंपिक ट्रॉफी फॉर एम्बॉडिंग द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, यूनिटी एंड एक्सीलेंस। With participation from all states of the Northeast region and competing in various disciplines, these games has not only promoted sports but also fostered a sense of unity and a camaraderie among the states of the Northeast. This is Asunyo from Akashvani News, Kohima.
अब रुख करते हैं मणिपुर का और ऑस्ट्रेलियाई लीग में खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर पांथोई चानू की बात करते हैं। मणिपुर आकार और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है। हालांकि राज्य में खेलों की अपार संभावनाएं हैं, ये हम सभी जानते हैं और इसे देश के एक स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। खेल के विभिन्न विषयों में से फुटबॉल के क्षेत्र में मणिपुर का उत्कृष्ट रिकॉर्ड है। मणिपुर की महिला फुटबॉलर बाला देवी स्कॉटिश महिला प्रीमियर लीग क्लब रेंजर FC के लिए खेलती थी। बाला देवी को प्राइड ऑफ इंडियन फुटबॉल का नाम भी दे दिया है। अब मणिपुर की एक और महिला फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉलर बनकर कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे इम्फाल संवाददाता जेजे थोकचोम ने बताया कि मणिपुर में लंबे संकट के बावजूद राज्य के खिलाड़ी खेलों में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने से कभी नहीं चूकते।
The sports person from the state never fails to make big achievements in the games and sports. The people of Manipur are still celebrating dominance in northeastern sports by clinching the title of overall champion in the recently concluded third Northeast Games held in Nagaland.
मणिपुर के लोग अभी भी नागालैंड में हाल ही में संपन्न हुए तीसरे नॉर्थ ईस्ट गेम्स में ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीतकर पूर्वोत्तर खेलों में प्रभुत्व का एक तरह से उत्सव मना रहे हैं। मणिपुर की एक और महिला फुटबॉलर ने ऑस्ट्रेलिया लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनकर भी एक उपलब्धि हासिल कर ली है। मणिपुर के काकचिंग जिले के छोटे से गाँव केड्राक की महिला फुटबॉलर एलांगबांग पंथोई चानू वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय टीम की गोलकीपर हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल तौर पर खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनने जा रही हैं। फुटबॉलर पंथोई बीते सप्ताह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय प्रीमियर लीग में मेट्रो यूनाइटेड WFC का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पंथोई चानू ने 12 साल की उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया और 2017-18 में ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय महिला लीग के दूसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बनी। इस बीच फुटबॉलर पंथोई मणिपुर से ऑस्ट्रेलिया के मैदान में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी, ऐसी आशा है। आकाशवाणी से बात करते हुए फुटबॉलर पंथोई के एक संबंधी, उनके चाचा जिन्होंने पंथोई को फुटबॉल के क्षेत्र में प्रेरित किया था, उन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि पंथोई फुटबॉल के लिए हमेशा से समर्पित थे और इस तरह उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। उन्होंने कहा,
I'm going to talk about my daughter, who is Yelamam Pantroi Chanu, who recently got selected in the Australian football club, that is Metro United WFC. We are very happy that we came to know that she got selected for that. She is the second child of our family, especially since her childhood. She was very dedicated with her football. Now, if you have to talk about the football, why she chose football is because Manipur is like, as we know that in India, is the powerhouse of the sports. So football has a lot of scope. As a guardian, what I want to say is that we feel very proud. And I would say that everyone in Manipur, I mean, it's not a girl child, we should encourage them to play any kind of good sports they feel which is good for them. And I'm sure that this is going to bring the names and laurels for our state and for India as a whole.
मणिपुर के महिला फुटबॉलर बाला देवी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बनाए गए रिकॉर्ड के बाद राज्य की एक और फुटबॉलर पंथोई मणिपुर में महत्वाकांक्षी फुटबॉलरों विशेषकर युवा लड़कियों के लिए एक आदर्श बन गई हैं। इसके अलावा फुटबॉलर देश भर के अनगिनत युवा एथलीटों के लिए उम्मीद भी जगा रहे हैं।
After the record set by Manipur women footballer Bala Devi in international arena, another footballer Panthoi from the state has become a role model for aspiring footballers, especially young girls in Manipur. Moreover, the footballer has become hope for countless young athletes across the country. JJ Thakshom, Akashwani News, Imphal.
आइए अब आज आपको हम लिए चलते हैं पूर्वोत्तर के सुंदर से राज्य सिक्किम की ओर। तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी कहा जाता है। सिक्किम देश के पूर्वोत्तर भाग में एक पर्वतीय राज्य है। सिक्किम के 4 जनपद हैं। सिक्किम राज्य अपने जानवरों, पौधों, नदियों, पहाड़ों, झरनों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ये देश का बहुत ही खूबसूरत और नन्हा सा राज्य है। सिक्किम राज्य में कई पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहाँ की पहाड़ियों की ऊंचाई 280 मीटर से 8585 मीटर तक की है। सिक्किम में सभी प्रमुख त्योहार जैसे दीपावली, दशहरा मनाया जाता है और साथ में बौद्ध धर्मावलंबी लोसार, लुसोंग, सागा दावा, दुबका देशी और इसी तरह से कई अन्य त्योहार भी मनाते हैं।
बतास ले बुक्सा यहाँ तथागत का अमर बाणी, श्रद्धा भक्ति गर्छौं सधैं, श्रद्धा भक्ति गर्छौं सधैं, जहां बच्चा चिस्ता रंगी।
सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भूटिया, लेपचा और नेपाली समुदायों के लोग हैं। सिक्किम का आधुनिक इतिहास 17वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1641-42 में 3 पवित्र लामा यहां आए थे। सिक्किम में बहुत देखे जाने वाली कला थांका के बारे में भी बताते चलते हैं। इस कला का बेहतरीन नमूना थांका चित्रकला की परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो चिंजोई बिन्ना आकृतियों के चित्रों का खूबसूरत डिजाइन कहा जा सकता है। पारंपरिक थांका चित्रकला ज्यादातर हाथ से बनाई जाती है और ये एक तरह का पेंट है जिसमें प्राकृतिक रंगों और गोल्ड डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये चित्र कढ़ाई करके भी बनाए जा सकते हैं और अधिकांशतः हम इन्हें मठों और घरों में देखते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ त्योहार में सजावट के लिए ही नहीं किया जाता, इन्हें धर्म के आधार पर आवश्यक भी माना जाता है। इस कला की शुरुआत नेपाल में 7वीं सदी से बताई जाती है। उस समय पेंटिंग करने की ये कला बहुत तेजी से फैली। पुराने समय में थांका चित्रकला का इस्तेमाल पढ़ाई या जानकारी देने के लिए सहायता के तौर पर किया जाता था। लामा या शिक्षक बुद्ध के जीवन और अनुभवों के बारे में बताते थे और कई देवताओं के पहलुओं को या बौद्ध सोच से जुड़ी हुई खास घटनाओं को बताने के लिए वे अपने साथ चित्र और डिजाइन भी रखते थे। थांका कला को धर्म की एक विजुअल प्रस्तुति भी माना जाता है और इसका इस्तेमाल कई तरीकों से होता है। सिक्किम पर्वतीय राज्य का आकार करीब करीब अंगूठे के तरह का है। ये राज्य पश्चिम में नेपाल और दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा है। साथ साथ अंग्रेजी, गोरखा, खस, लेपचा, भूटिया और लिम भाषा और बोलियां इस्तेमाल होती हैं। सिक्किम में खेती की बात करें तो संतरे की खेती यहाँ होती है और ये यहाँ का एक मूल फल है और पूरे देश में लोकप्रिय है। पूर्वी हिमालय का हिस्सा सिक्किम में अपनी जैव विविधता के लिए उल्लेखनीय है। इसमें अल्पाइन और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले पर्वत शामिल हैं। साथ ही यहाँ है कंचनजंगा पर्वतमाला, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर गैंगटॉक है। सिक्किम भारतीय राज्यों में सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। इसका लगभग 35% भाग कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा कवर किया गया है। वैसे कहा जाता है कि सिक्किम साम्राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी में नामग्याल राजवंश द्वारा की गई। इस पर चोग्याल नामक बौद्ध पुजारी राजा का शासन था। 1819 में ब्रिटिश भारत की एक रियासत बनाई और 1947 के बाद सिक्किम ने भारत गणराज्य के साथ अपनी संरक्षित स्थिति जारी रखी। हिमालयी राज्यों में अगर देखें तो इसकी साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आधुनिक सिक्किम एक बहुजातीय और बहुभाषीय राज्य है। यहाँ की संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के उद्देश्य से आधिकारिक भाषाओं में गुरंग, लिम्बू, मुखिया, नेवारी, शेरपा और तमांग शामिल हैं। सिक्किम में अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई जाती है और सरकारी दस्तावेजों में इसका उपयोग किया जाता है और हिंदी बोली और समझी भी जाती है। हिंदू और वज्रयान बौद्ध धर्म मानने वाले लोग यहाँ हैं। सिक्किम एक छोटा लेकिन पर्वतीय पर्यटक स्थल है। ये अपनी खूबसूरत धरोहर के रूप में वनस्पतियों, चाय बागानों, बर्फ से ढकी चोटियों, पुराने मठ और मंदिरों के लिए जाना जाता है। कंचनजंगा की ऊंची चोटियों से लेकर शांत झीलों और जीवंत मठों तक सिक्किम विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करता है।
बच्छा टिस्टा रंगी जहाँ कंचन जंगा असी जहाँ बच्छा टिस्टा रंगी जहाँ कंचन।
यहाँ एक युमथांग घाटी है जिसे फूलों की घाटी भी कहा जा सकता है। ये गैंगटॉक से 148 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी सिक्किम की तरफ स्थित है। यहाँ वनस्पतियों और जीवों का आकर्षक रूप प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग की तरह है। ये खूबसूरत घाटी हिमालयी फूलों की कई प्रजातियों का घर है। आइए अब सुनते हैं सिक्किम का एक गीत, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
Someday
पूर्वोत्तर डायरी।
पूर्वोत्तर के साथ ही देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के उम्मीदवार तय करने सहित प्रचार कार्य और बैठकों का दौर शुरू हो चला है। असम में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों के लिए 35 उम्मीदवार मैदान में हैं और अरुणाचल प्रदेश में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायकों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा की सीटें हैं और 2 लोकसभा की सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 19 अप्रैल को होगा।
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 10 सीटें निर्विरोध जीत ली है। 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए अब सिर्फ 50 सीटों के लिए ही मतदान कराए जाएंगे। 6 विधानसभा क्षेत्र में एकल नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, जबकि 4 अन्यों में विपक्षी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और ईटानगर विधायक तेची कासो उन प्रमुख उम्मीदवारों में से है जिसने निर्विरोध जीत हासिल की है। भाजपा ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस पार्टी केवल 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य के दोनों संसदीय क्षेत्रों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें अरुणाचल पश्चिम संसदीय क्षेत्र के लिए 8 और अरुणाचल प्रदेश पूर्व क्षेत्र के लिए 6 उम्मीदवार हैं। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
निर्वाचन आयोग की भरपूर कोशिश रहती है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। त्रिपुरा की बात करें तो पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण के लिए मिले हुए नामांकन पत्रों की जांच के बाद सभी 9 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। त्रिपुरा में चुनाव कर्मियों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है और लोकसभा चुनाव की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। राज्य में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की अधिसूचना के साथ ही मेघालय में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेघालय में केवल 2 लोकसभा सीट हैं, एक शिलंग और दूसरी तुरा, दोनों सीटें सुरक्षित सीट हैं। राज्य में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी पवन कुमार सिंह ने राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित मुद्दों पर ईटानगर में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की है। उधर नागालैंड में लोकसभा चुनावों में नाम वापस लेने की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद अब 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नागालैंड सहित पूर्वोत्तर में गुड फ्राइडे के दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की गई। गुड फ्राइडे के अवसर पर विश्व भर में गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। पूर्वोत्तर में भी प्रत्येक पर्व की तरह गुड फ्राइडे के अवसर पर शांति की कामना की गई। मानवता के लिए प्रभु ईसा मसीह के बलिदान के दिन को गुड फ्राइडे, होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु ईसा मसीह के बलिदान और मानवता के लिए उनके निस्वार्थ प्रेम का स्मरण किया जाता है और आज है ईस्टर संडे। ईसाई समुदाय इसे खुशी के पर्व के रूप में मनाते हैं। ईस्टर पर्व मनाने को लेकर ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन प्रभु ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे और इसी खुशी में सभी लोग ईस्टर का पर्व मनाते हैं। ईस्टर एग का बहुत महत्व होता है। लोग अपने घरों की साज सज्जा में इसका इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के तोहफे भी देते हैं और इसके पीछे कारण ये है कि इन्हें लोग जीवन की बल्कि नए जीवन की एक शुरुआत मानते हैं और नए जीवन का संदेश देता है ईस्टर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ईस्टर के त्योहार पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि प्रभु ईसा मसीह के पुनर्जीवन की स्मृति में मनाए जाने वाला ये पर्व प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कामना की है कि ईस्टर सबके जीवन में शांति और सद्भाव लाएगा। इससे पहले मिजोरम और नागालैंड में बीते रविवार को पाम संडे का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इसे तुमकाउ नी के नाम से भी जाना जाता है। पाम संडे के अवसर पर राज्य के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना होती है और इसके बाद जुलूस निकाले गए। पाम संडे का त्योहार यरूशलम में ईसा मसीह के प्रवेश करने की स्मृति में मनाया जाता है और पाम संडे के आयोजन के ठीक एक सप्ताह बाद ईस्टर संडे मनाया जाता है। पूर्वोत्तर का समूचा इलाका हवाई सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। कोई भी जगह अब दूर नहीं, तो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें। पूर्वोत्तर में आप अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल को देखेंगे और इसे महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये। एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। इसके साथ ही अब अगले रविवार आपसे मुलाकात होगी। इस वादे के साथ हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी।
खुल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। खुल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये। एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।